अनुसंधान किसी समस्या के प्रति ईमानदारी एवं व्यापक रूप से समझदारी के साथ की गई खोज है, जिसमें तथ्यों, सिद्धांतों एवं प्रत्ययों की जानकारी दी जाती है। अनुसंधान से प्राप्त निष्कर्ष प्रामाणिक तथा पुष्टि योग्य होते हैं, जिससे ज्ञान में वृद्धि होती है। अनुसंधान करने में जो क्रियात्मक अनुसंधान है, वह क्रियात्मक अनुसंधान आपके हिंदी भाषा शिक्षण में एक बिंदु के रूप में है। आज मैं इसी को शुरू करती हूँ। मनुष्य के सामने देखिए तीन प्रश्न हमेशा रहते हैं कि जो आज है वो कल रहेगा कि नहीं, मतलब कब, क्यों और कैसे। ये तीन प्रश्न मनुष्य के सामने हमेशा उपस्थित रहते हैं। अब ये प्रश्न किसी नवीन समस्या के संदर्भ में सबसे पहले उपस्थित होते हैं और मनुष्य इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए वस्तुनिष्ठ ढंग से समस्या का निरीक्षण करता है, विश्लेषण करता है, सत्य और असत्य में भेद करता है और अंत में सत्य की खोज करके नियमों एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन करता चलता है। और जब यह उपलब्धियां प्रयोग की कसौटी पर खरी उतरती हैं, तब इस संपूर्ण प्रक्रिया को ही अनुसंधान कहते हैं। संक्षेप में देखा जाए तो अनुसंधान किसी मौलिक समस्या का हल प्राप्त करने की एक ऐसी वैज्ञानिक विधि है जिसके परिणाम सत्य एवं अनुकरणीय होते हैं और उनसे ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि होती है। देखिए कि जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसको परिभाषित करते हुए स्टीफन एम मोरे ने क्या कहा है। उनका कहना है कि क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत शोधकर्ता अपनी समस्या का वैज्ञानिक अध्ययन इस उद्देश्य से करता है कि उसके निर्णयों एवं कार्यों को उचित दिशा प्रदान की जा सके, उन्हें सुधारा जा सके तथा उनका मूल्यांकन संभव हो सके। मैग्रेथ ने क्या कहा है। मैग्रेथ कहते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान संगठित खोजपूर्ण क्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति और समूह क्रियाओं में रचनात्मक सुधार एवं विकास करना है। इस प्रकार से देखिए जो क्रियात्मक अनुसंधान है वह एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा समस्याओं का अध्ययन वस्तुनिष्ठ रूप में किया जाता है, उसमें सुधार लाया जा सकता है। इसका प्रयोग केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं में भी किया जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का जो विकास हुआ वो सन 1926 के आसपास माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले बकिंगम ने इसका उल्लेख अपनी पुस्तक रिसर्च फॉर टीचर्स इसमें किया था और इसको जो ज़्यादा आगे बढ़ाया उसका श्रेय जाता है कि पूर्व में मैंने जिसकी परिभाषा आपको बताया स्टीफन एम कोरे महोदय ने इसको ज़्यादा आगे बढ़ाया। चलिए देखते हैं कि इस क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है। सबसे पहले उद्देश्य देखिए विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार लाना तथा विकास करना। दूसरा देखिए छात्रों तथा शिक्षकों को लोकतांत्रिक गुणों का विकास करना, छात्रों और शिक्षकों में लोकतांत्रिक गुणों का विकास करना। तीसरा देखिए शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, प्रबंधकों, प्रशासकों, निरीक्षकों आदि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। चौथा कार्यकर्ताओं में कार्यकुशलता का विकास करना। पांचवा देखिए प्रशासकों एवं प्रबंधकों को विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार तथा परिवर्तन हेतु सुझाव देना। अगला देखिए विद्यालयों की परंपरागत रूढ़िवादिता एवं यांत्रिक वातावरण को समाप्त करना। अगला देखिए विद्यालय की कार्यप्रणाली को प्रभावशील बनाना। अगला देखिए छात्रों की निष्पत्ति को ऊंचा उठाना। अब हम बढ़ते हैं, ये तो हो गए आपके क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य। अब हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसके पद क्या क्या हैं। व्हाट इज द स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च। इसके जो प्रमुख सोपान या पद हैं, सबसे पहले है समस्या की पहचान एवं कथन। जब तक अनुसंधानकर्ता को अपनी समस्या का स्पष्ट ज्ञान नहीं हो जाता तब तक वह उसके निराकरण के लिए उपाय नहीं खोज पाता। मस्तिष्क में समस्या का चित्र जितना ही स्पष्ट होगा उतनी ही सफलता के साथ वह उस समस्या का समाधान खोज सकेगा। समस्या को सही से पहचानने के बाद उसका कथन स्पष्ट रूप से कर दिया जाना चाहिए। जो प्रबंधक हैं, प्राचार्य हैं, प्रबंधकों, प्राचार्यों एवं शिक्षकों को विद्यालय से जुड़ी आंतरिक समस्याओं को ही अध्ययन हेतु लेना चाहिए। साथ ही समस्या का क्षेत्र भी सीमित होना चाहिए। समस्या का समाधान खोजने के लिए उपकरण भी आसानी से उपलब्ध हो जाने चाहिए, जैसे समय, शक्ति एवं धन की शक्ति से भी समस्या मितव्ययी होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे हम आते हैं इसके पदों में कि समस्या का सीमांकन। इसके अंतर्गत चयन की गई समस्या की विस्तृत व्याख्या की जाती है और समस्या से जुड़े अनेक प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर दिया जाता है। शोधकर्ता समस्या के व्यापक क्षेत्र को अपनी सामर्थ्य, समय तथा उपलब्ध साधनों को दृष्टिगत रखते हुए समस्या का परिसीमन, डीलिमिट जिसको कहते हैं, कर लेता है। ऐसा करने से शोधकर्ता अपने कार्य को सहज रूप से बिना किसी परेशानी के, व्यवधान के, सरलता से पूरा कर लेता है। समस्या के सही समाधान के लिए समस्या से संबंधित साहित्य तथा किसी शैक्षिक सिद्धांत को आधार बनाना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यह सब शोधकर्ता के लिए एक दिशा निर्देशक का कार्य करता है। बढ़ते हैं आगे। तीसरा नंबर है समस्या से संबंधित कारणों का विश्लेषण। समस्या से संबंधित कारणों का पता लगाने के लिए अनेक साक्ष्यों का सहारा लेना पड़ता है, एविडेंस, प्रमाण। तो जो साक्ष्यों एवं कारणों की सूची तैयार की जाती है उसके बाद कारणों का विश्लेषण करके ये पता लगाया जाता है कि इनमें से कौन कौन से कारण सही हैं तथा ये किस सीमा तक समस्या के लिए उत्तरदायी हैं। कारण आप जानते हैं कि जब समस्या पता चल जाएगी तो समस्या का कारण पता चलेगा, समस्या का कारण पता चलेगा, तब हम निवारण के लिए उसके उपाय खोजेंगे। तो यह ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जिन कारणों को वह समस्या के लिए उत्तरदायी मान रहा है या उन्हें समस्या से संबंधित मान के चल रहा है, वे समस्या से तार्किक रूप से जुड़े हैं अथवा नहीं। ये कारक परीक्षण के योग्य भी हो, वास्तविक भी हो, इन्हें विशिष्ट रूप से व्यक्त भी किया जा सकता हो और इनके मूल स्रोत की जानकारी भी शोधकर्ता को होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अगला बिंदु है उपकल्पना का निर्माण। समस्या के विश्लेषण के पश्चात शोधकर्ता को यह सोचना पड़ता है कि समस्या से जुड़े कारणों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। इस कार्य के लिए संभावित उपकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। ये उपकल्पनाएं एक प्रकार से समस्या का संभावित हल होती हैं। इन उपकल्पनाओं का निर्माण बहुत सोच समझकर किया जाना चाहिए। वे स्वयं में पूर्ण हों, स्पष्ट हों, एकार्थी हों, उद्देश्य प्राप्ति में सहायक हों, परीक्षण योग्य हों, इनका आसानी से सत्यापन किया जा सकता हो, जैसे, और साथ ही साथ ये समय, शक्ति एवं ध्यान की दृष्टि से भी कम खर्चीली होनी चाहिए। अगला बिंदु देखिए, इसको कहते हैं प्रयोग का प्रारूप। प्रयोग प्रारूप, इस सोपान के अंतर्गत हम शोधकर्ता जो है परिकल्पनाओं की सत्यता की जांच करने के लिए उपयुक्त रूपरेखा तैयार करते हैं। इस बात पे विचार करना होता है कि समस्त कार्य को किस प्रकार से संपादित किया जाएगा, समस्या का संपादन किन परिस्थितियों में किया जाएगा, कौन कौन से मुख्य रूप भाग लेंगे उसमें, किन उपकरणों को प्रयोग में लाया जाएगा और कितना समय लगेगा, परिणामों का निरीक्षण कैसे किया जाएगा और किस प्रकार उनका लेखा जोखा रखा जाएगा। प्रयोग प्रारूप तैयार करते समय शोधकर्ता को चाहिए कि उपलब्ध साधनों एवं समय का ध्यान रखे। ये जो है सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब देखिए, जो उपकल्पनाएं हैं, उपकल्पनाओं की परीक्षण की दृष्टि से इन्हें उपयोगिता क्रम में व्यवस्थित कर लेना चाहिए। कोई उपकल्पना उद्देश्य प्राप्ति में कितनी सहायक सिद्ध हो रही है यह जानने की अनेक विधियां हैं, जैसे अवलोकन, मत संग्रह, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, चेकलिस्ट विधि, रेटिंग स्केल और सांख्यिकीय गणना। शोधकर्ता को चाहिए कि परिस्थिति के अनुकूल ही विधियों का प्रयोग करें। अगले बिंदु पे हम बढ़ते हैं, निष्कर्ष। परीक्षण से पहले तथा बाद में साक्ष्यों की तुलना करके शोधकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि समस्या का समाधान खोजने में अनुमानित प्रयास किस सीमा तक सफल रहे हैं। प्राप्त परिणामों का परिकल्पनाओं के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। इससे परिकल्पना की पुष्टि हो जाती है। अगर परीक्षण के बाद समस्या के समाधान में आशातीत सफलता नहीं मिलती, तब शोधकर्ता समस्या का पुनर्निदान करता है और समस्या के समाधान हेतु एक बार फिर प्रयास करता है। अंतिम बिंदु हम देखते हैं, इसको कहते हैं जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण। यदि प्राप्त परिणामों से परिकल्पनाओं की पुष्टि होती है तो इस प्रयोग को अन्य समान परिस्थितियों में कई बार दोहराया जाएगा, और यदि प्रत्येक बार एक जैसे परिणाम प्राप्त होते हैं तो यह सामान्यीकरण करना चाहिए कि अमुक समस्या को हल करने में अमुक उपाय किए जाने चाहिए। आइए अब हम देखते हैं कि मौलिक अनुसंधान एवं क्रियात्मक अनुसंधान दोनों में क्या अंतर है। पहले मैं मौलिक अनुसंधान के बारे में बताऊंगी कि मूलभूत अंतर क्या है क्रियात्मक अनुसंधान से। इसका उद्देश्य सर्वमान्य सत्यों को खोजकर ज्ञान में वृद्धि करना है। क्रियात्मक अनुसंधान में है, इसका उद्देश्य व्यक्तिगत अथवा समूह विशेष की क्रियाओं में सुधार लाना है। मौलिक अनुसंधान में फिर आइए नंबर दो, इसका क्षेत्र विस्तृत होता है। क्रियात्मक में इसका क्षेत्र व्यक्तिगत अथवा समूह क्रियाओं तक सीमित रहता है। मौलिक अनुसंधान में तीसरा बिंदु आपका है, यहाँ कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में शोध कर सकता है। और क्रियात्मक अनुसंधान में तीसरा बिंदु है, शोधकर्ता स्वयं अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं। चौथा बिंदु आपका मौलिक अनुसंधान में है कि अनुसंधान के पदों का कठोरता से पालन किया जाता है। और चौथा बिंदु आपका क्रियात्मक अनुसंधान में है कि अनुसंधान पदों का सामान्य ज्ञान ही प्राप्त करना बहुत होता है। मौलिक अनुसंधान में आपका पांचवा बिंदु देखिए, सामान्यीकरण का विशेष महत्व इसमें होता है। क्रियात्मक अनुसंधान में सामान्यीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। मौलिक अनुसंधान में जो परिणाम प्राप्त होते हैं वो सामान्यतः अपरिवर्तनशील होते हैं, लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान में प्राप्त परिणाम परिवर्तनशील होते हैं। मौलिक अनुसंधान में जो निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं उनका प्रयोग सर्वत्र किया जा सकता है, लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान में इनका प्रयोग दूसरी परिस्थितियों में भी नहीं किया जा सकता। मौलिक अनुसंधान में का प्रत्यय बहुत पुराना है, क्रियात्मक अनुसंधान का संप्रत्यय नवीन है। मौलिक अनुसंधान के जो मानक हैं इसमें मानक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, क्रियात्मक में स्वनिर्मित उपकरणों से ही काम चल जाता है। मौलिक अनुसंधान में न्यायदर्श बड़ा होता है, क्रियात्मक में न्यायदर्श छोटा होता है। मौलिक अनुसंधान में परिकल्पना निर्माण एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, लेकिन क्रियात्मक में परिकल्पना निर्माण को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता। मौलिक अनुसंधान में शोध कार्य पूरा होने पर पीएचडी डिग्री प्रदान की जाती है। क्रियात्मक अनुसंधान में शोधकर्ता मात्र अपनी व्यक्तिगत अथवा व्यावहारिक समस्याओं को हल कर पाता है। तो ये आपका हो गया क्रियात्मक अनुसंधान, इसको आप दोहरा लीजिएगा। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अधिक से अधिक घर में रहें, जरूरी कार्य के लिए ही बाहर निकलें। धन्यवाद।